மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி. யசோதானந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதானந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதானந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யமுனா தீரவனசாரி, யமுனா தீரவனசாரி, ஜய ராதமாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி, யசோதானந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதானந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதானந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யமுனா தீரவனசாரி, யமுனா தீரவனசாரி, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜய ஜய பிரபுபாத் 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 ஜய ஸ்ரீல பிரபுபாத், ஜய ஜய குருதேவ் 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 ஜய ஸ்ரீல குருதேவ், హరినామ సంకీర్తన్ కి గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం కి శ్రీల ప్రభుపాద్ కి నితాయ గౌర ప్రేమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் ததோ ஜயமுதிரே நஷ்ட ப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోప కుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. తో ఆజ్ హమ్ పఢ్ రహే శ్రీమద్ భాగవత్ స్కంద 5 అధ్యాయ 2 ఔర్ శ్లోక సంఖ్య హై 9 సే లేకర్ 13 తక్ సబ్కే శ్లోక ఔర్ పర్పట్ పఢ్నే హై. परपोट भी है उसको सब पढ़ने. तो मैं अकेला गाऊंगा, अकेला पढ़ूंगा. आप सुन. हरे कृष्ण. शिष्याई में भगवत परित पठंती गायंती साम सहरस हस्य मजसस्त मिश्यम युष्मच्छि खा विलुलिता सुमनाभिवृष्टि सर्वे भजंती तुष्गना इव वेद शाखा. ये 9वां श्लोक है. पूर्व चित्ति का अनुगमन करने वाले भवरों को देखकर महाराज अग्निंद्र बोले, भगवान ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारा शरीर को घेरे हुए ये भवरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य है. वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं. जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भवरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं. वाचम परम चरण पंजर तित्तरी नाम ब्रह्मन रूप मुखराम श्रवा शणवाम तुभ्यम लब्धा कदम्ब रुचि रुचिरंग विटंक विबिंबे यस्यामलात परिधि क्वच वलकलम ते. हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ती है. ऐसा लगता है कि उनके भीतर तीतर पक्षी चहक रहे हैं. मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूँ कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं. जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम्ब के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हो. तुम्हारी कमर में ज्वाज्वल्यमान अंगारों की मेखला पड़ी हुए. दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो. तात्पर्य, पूर्व चित्ति को कामुक भाव से देखते हुए अग्निंद्र ने उस तरुणी के आकर्षक नितंबों तथा कटी भागों पर दृष्टि फेरी. जब मनुष्य किसी स्त्री को इस प्रकार कामेच्छा से देखता है तो वह उसके मुख स्तन तथा कटी पर मोहित हो जाता है, क्योंकि पुरुष को अपनी वासना तृप्त करने के लिए स्त्री के पहले पहल अपनी सुंदर मुखाकृति अपने उरोजों के उभार और कटी भाग से आकर्षित करती है. पूर्व चित्ती ने सुंदर पीला रेशमी वस्त्र पहन रखा था, अतः उसके नितंब कदम्ब पुष्प के समान लग रहे थे. करधनी के कारण उसकी कमर ज्वाज्वल्यमान अंगारों से घिरी प्रतीत हुई. यद्यपि वह वस्त्रों से पूर्णतः सज्जित थी, किंतु अग्निंद्र इतना काम मोहित हो गया था कि उसे पूछना पड़ा, तुम वस्त्र रहित होकर क्यों आई हो. किम संभुता रुचिरयोद्विर श्रृंगयोस्ते मध्ये कृशो वहसियत्र दृशीश्रिता मे पंकोरुणसुरभिरात्म विशान इद्रक येनाश्रमं सुभगमे सुरभि करोषि. तब अग्निंद्र ने पूर्व चित्ति के उभरे हुए उरोजों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहन कर इन दो सिंगों को धारण कर रही हो जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं. इन दोनों सुंदर सिंगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इसके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो. हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? तात्पर्य, अग्निंद्र ने पूर्व चित्ति के उन्नत उर्जों की प्रशंसा की. उसके उर्जों को देखकर वह लगभग प्रमत्त हो उठा. तो भी वह नहीं पहचान पाया कि पूर्व चित्ति किशोर था या कोई किशोरी, इसलिए उसने उसे द्विज हे ब्राह्मण कहकर संबोधित किया. किंतु द्विज अर्थात ब्राह्मण बालक के वक्षस्थल पर सिंह क्यों हो? क्योंकि बालक की कमर पतली थी. अग्निंद्र ने सोचा कि वह अत्यंत कठिनाई से इसका भार ढो रहा है, अतः इनके भीतर अवश्य ही कुछ मूल्यवान वस्तु भरी होगी, अन्यथा वह उनको क्यों वहन कर रहा है? जब किसी स्त्री की कटी पतली और उरोज उठे हुए होते हैं तो वह अत्यंत आकर्षक लगती है। अग्निंद्र ने मोहित नेत्रों से क्रूर शरीर वाली लड़की के लाल स्तनों का चिंतन किया और कल्पना की कि उसके नितंब इसको कैसे वहन करते होंगे। अग्निंद्र ने कल्पना की कि उसके उरोज उन्नत उरोज उसके दो सिंह है जिन्हें उसे वस्त्र से इसलिए ढक रखा था जिससे उनके भीतर के बहुमूल्य पदार्थों को कोई देख न सके, किंतु अग्निंद्र उनको देखने के लिए अत्यंत व्यग्र था। अतः उसने प्रार्थना की, कृपया इसके आवरण हटा दो जिससे मैं देख सकूं कि इसके भीतर क्या भरा है। विश्वास रखो कि मैं उन्हें नहीं भागूंगा, लेकिन नहीं भागूंगा। यदि तुम्हें कुछ असुविधा हो तो क्या मैं स्वयं खोलकर देख सकता हूँ कि इन उन्नत सिंहों के भीतर क्या है। वे उसके स्तनों के ऊपर फैले हुए सुरभित कुमकुम के लाल चूर्ण से चकित थे। इतने पर भी उसने पूर्व चित्ति को बालक समझकर उसके सुभग अर्थात भाग्यशाली मुनि कहकर संबोधित किया। यह बालक भाग्यशाली रहा होगा, अन्यथा इसके वहां खड़े होने से अग्निंद्र का पूरा आश्रम कैसे महक सकता है। लोकम प्रदर्शय श्रुहुतम तावकम वे यत्रत्ययित्थमुर सावयवाव पूर्वाव अस्मदिधस्य मन उन्नयन्नु बिभर्ति भवद्भुतम सरसरास सुधादिवक्त्रे। मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत उरोजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए। जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं, उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि उनके मुख में अमृत बसता होगा। तात्पर्य, प्रमत्त अग्निंद्र ने उस स्थान को भी जानना चाहा जहाँ से वो ब्राह्मण बालक आया था और जहाँ के मनुष्य के वक्ष स्थल इस प्रकार उठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि संभवतः ऐसे आकर्षक अन उनकी कठिन तपस्या के फल स्वरूप हो। अग्निंद्र ने इस बालिका को श्रुतम कहकर संबोधित किया जिससे वह उसे वहां ले जाने के लिए जाने से कहीं अस्वीकार न कर दे। अग्निंद्र ने न केवल उस बालिका के उन्नत उरजों से मोहित थे वरन उसकी मधुर वाणी से भी आकृष्ट थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके मुख से अमृत निकल रहा हो, इसलिए वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कावात्म वृत्ति रदना धविरंगवाती विष्णु कला से निमिषोन मकरोच कर्ण उद्विग्न मिन युगलम द्विज पंक्ति शोची रासन्न भृंग निकरम सरइन मुखम ते। मित्रवर, शरीर पालन के लिए तुम क्या खाते हो? तांबूल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्न जड़ित कुंडल उन दो उज्जवल मकरों के तुल्य है जिनके नेत्र विष्णु के समान अपलख रहने वाले हैं। तुम्हारे दो नेत्र दो चंचल मछलियों के सदृश है। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही है। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांत की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती है और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भंवरों के झुंड के समान है। तात्पर्य, भगवान विष्णु के भक्त उन्हीं के अंश भी है और विभिन्न अंश कहलाते हैं। भगवान विष्णु को सभी प्रकार की हवियां भेंट की जाती है और भक्तगण उनका बचा हुआ भोजन अर्थात प्रसाद खाते हैं। अतः हवि की सुगंधी न केवल विष्णु से निकलती है वरन प्रसाद पाने वाले भक्तों के शरीर से भी निकलती है। अग्निंद्र पूर्व चित्ती को उसके शरीर से निर्गत सुगंधी के कारण भगवान विष्णु का अंश मान रहे थे। इसी के साथ ही साथ उसके मकराकार रत्नजड़ित कुंडलों उसके शरीर की सुगंध के पीछे मत्त होकर दौड़ने वाले भौरों के समान काले बालों तथा हंसों के समान श्वेत दंत पंक्ति के कारण अग्निंद्र ने उसे उसके मुख की उपमा कमल पुष्पों मछलियों हंसों तथा भौरों से अलंकृत सुंदर सरोवर से दी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातम् सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमें आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि भागवतम के इस जो वर्णन है उसके ऊपर कुछ बोल सको। देखा जाए तो हमारी कोई योग्यता नहीं है भागवतम के ऊपर बोलने के लिए, और इस विषय के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम खुद इतना संघर्ष कर रहे हैं, माया के साथ हर पल लड़ना पड़ता है हमको। लेकिन फिर भी हमारे अखंड हरिनाम की कथा चलने वाले संयोजक हमारे युगल श्याम प्रभु उनकी आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। कृष्ण भागवत जो है वो कृष्ण के तुल्य है, यानी कृष्ण से अभिन्न है भागवत, और विभु यानी ऑल पावरफुल पूर्ण शक्तिमान है। आगे कहा है सर्वाश्रय, सर्वाश्रय मतलब सबको आश्रय दे सकता है, एवरीवन हर एक व्यक्ति को हर एक जीव को आश्रय दे सकता है भागवत। और क्या कहा है आगे, प्रति श्लोके हर एक श्लोक प्रति अक्षरे हर एक अक्षर में नाना अर्थ छुपे हैं। तो इस तरह से भागवत इसमें एक दूषण एक ड्रॉप भी नहीं है भौतिकता का, एक भी ड्रॉप नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ऐसा वर्णन पढ़ने के बाद कभी कभी हमारे मन में डाउट आता है, जैसे आचार्य रत्न प्रभु बोल रहे थे ना कि क्यों ऐसा वर्णन है, बहुत अच्छा बता रहे थे प्रभु जी। तो इस तरह से भागवत में कुछ भौतिक दूषण नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भागवत उसका जो सुनता है पढ़ता है उसको केवल शुद्धिकरण के मार्ग पर ही लेके जाता है, उसका एक ही उद्देश्य है, कैसा भी पढ़ेगा भागवत वो तो उसका शुद्धिकरण ही होने वाला है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। तो गलती से भी हमको भागवत को मंडेन भौतिक नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए भौतिक। इसको पढ़ के हमारा शुद्धिकरण होगा, और इसकी जो लीला है अनेक अनेक भक्तों की, उस कभी कभी समझ में नहीं आती हमको, अब ये हमारे दिमाग के बाहर है ना ऐसे ये हमारे दिमाग के बाहर है, लेकिन फिर भी भागवत कृष्ण से अभिन्न है। मेरे दिमाग में दो सब्जेक्ट थे क्या चर्चा करने का, लेकिन हमारे मन से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बाजू में रख दिया, जो सुना है उसको ही चर्चा करेंगे। तो इस तरह से भागवत एकदम शुद्ध है। तो ऐसा ही वर्णन एक अप्सरा का है, जैसे वर्णन ऐसा पुरंजन की स्टोरी में भी आता है ना तो उसमें एक श्लोक आता है, तमाह ललितम वीर सवृण स्मित शोभनाम सिग्ने न पांख पुंखे न स्पृष्ट प्रमोद भ्रमद भ्रुवा। तो इस श्लोक में वो नारद मुनि बताते हैं कि वो जो अप्सरा है उसको देख के जो पुरंजन है, हालांकि वो वीर है, हीरो है, लेकिन फिर भी वो भ्रमित हो गया। वो क्या हो गया? भ्रमित, उसके ऊपर पूरी तरह से वो मोहित हो गया, उसके सौंदर्य के ऊपर। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तो वीर जीव है, एक्चुअली जीव भगवान का अंश है, तो वो हमेशा वीर ही रहता है, हीरो ही है, क्योंकि हीरो का अंश हीरो ही होगा लेकिन तो जीरो कैसे होगा, लेकिन वो जीरो हो जाता है क्योंकि वो इस माया के चक्कर में आके मोहित हो जाता है, तो इसलिए वो मोहित हो जाता है, इसलिए वो फिर जीरो हो जाता है। तो भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि आपके पास दो पर्याय है, जीव के पास, एक तो आप इस भौतिक जगत में माया से मोहित होके भौतिक वीर बन सकते हैं, जैसे बड़े राजकारणी बन सकते हैं, बड़े हीरो बन सकते हैं, क्रिकेटियर, फुटबॉल प्लेयर, कुछ भी बन सकते हैं ये माया से मोहित होकर, नहीं तो आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके गोस्वामी बन सकते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक वीर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा, कितना भी पूरे दुनिया को चलाने वाला होने दो, लोग उसकी स्तुति करने दो, हर क्षेत्र में प्रवीण हो, लेकिन जब वो स्त्री के वक्षस्थल को देखता है हरिबोल हो जाता है उसका, वो डायरेक्ट सरेंडर हो जाता है उसके सामने। लेकिन ये भौतिक चीज आसान, एकदम आसान है भौतिक चीज, भौतिक दुनिया में हीरो बनना, लेकिन गोस्वामी बनना ये असली हीरो है। प्रभुपाद लिखते हैं उसमें ऐसे अनेक उदाहरण है, और पूना का उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने, पूना में ये शनिवार वाड़ा है ना, ये बाजीराव पेशवा ने बांधा है। तो प्रभुपाद लिखते परपोट में, आपने सुना होगा ये भागवतम, ये बाजीराव है जो बाजीराव पेशवे पूरा दिल्ली तक लड़ते गया था, दिल्ली तक लड़ते गया था, लेकिन एक मस्तानी के प्रेम में पागल हो गया। वो मस्तानी का कब्र है, आप शनिवारवाड़ा में जाएंगे, शनिवारवाड़ा के बाहर कब्र बांध के रखी मस्तानी की, वो उसकी प्रियसी थी। और आप दिव्य घाट में जाएंगे, जिजुर में जाते एक घाट में नीचे देखेंगे तो एक कुआ है, उधर वो दोनों मिलने आते थे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रभुपाद ने नहीं दिया ये मुझे पता है क्योंकि वो फेमस है उधर का तो उसका नाम भी ऐसा ही कुछ है, मस्तानी कुआ ऐसा करके, तो वो दोनों उधर मिलते थे। तो प्रभुपाद पॉइंट क्या है, इतना बड़ा पूरा मुगलों को पागल कर दिया था पेशवों ने, पूरा दिल्ली तक जाके वो लड़े थे, लेकिन एक स्त्री के सौंदर्य को मोहित हो गया। बाद में दूसरा उदाहरण देते प्रभुपाद, प्रभुपाद कहते हो क्लियोपात्रा के सौंदर्य से रोमन वीर एंटोनी मोहित हो गया और इस कमजोरी का फायदा उठा के पहले जमाने में राजा लोग क्या करते थे, विष कन्या को बनाते थे, क्योंकि विष कन्या के सौंदर्य के ऊपर मोहित होके किसी को आसानी से मार दिया जा सकता है उनके ऊपर कुछ। तो प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि जीव हालांकि भगवान का अंश है और एक वीर है, लेकिन दुर्बलता के कारण भौतिक रूप की तरफ आकर्षित हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि जीव को उधर से भगवत धाम से जबरदस्ती किया, जाओ नीचे भौतिक जगत में, नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, वो ये ललना ये भौतिक जगत के स्त्री की तरफ आकर्षित होकर इधर आता है, वो केवल स्त्री के आकर्षण के प्रति मोहित होकर वो इस जगत में आता है। और प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भय रूप, कृष्ण बहिर्मुख हय भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झापड़िया धारे। तो इस तरह से प्रभुपाद बोलते कि वीर मतलब क्या है, आपको सब इंद्रियों को कंट्रोल करके वीर बनना चाहिए। तो जैसे हमारे हरिदास ठाकुर वीर है, इतने वीर है कि उनके ऊपर जो माया देवी भी आई थी उनको मोहित करने के लिए, वो वेश्या भी आई थी तो उनको उन्होंने डिवोटी बना दिया, दीक्षा दिया, और वो लोग उस दूसरों का कल्याण करने लगे। इसको बोलते हीरो, इसको बोलते वीर। तुकाराम महाराज है, तुकाराम महाराज को मोहित करने के लिए वेश्या को भेजा था, लेकिन वो वेश्या बाद में उनको पूछते तुकाराम महाराज को, उसका गाना सुनते तुकाराम महाराज, और वो गाना गाते तो तुकाराम महाराज वो उनका टिपरी बजाते और कीर्तन करते। तो उसको लगता है अरे ये तो इतनी आसानी से मोहित हो गए, लेकिन जब गाना बंद करती है तो पूछती है मेरा गाना कैसे लगा। तुकाराम महाराज बोलते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और मैं कैसी लगी, बहुत सुंदर। तो और उड़ ऊपर उठ जाती हो बहुत सुंदर बोलने के बाद। और बाद में तुकाराम महाराज बोलते एग्जैक्ट मेरे रुक्मिणी माता के जैसे लग रही आप। तो वापस नहीं जाती हो। तो इस तरह से ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। एक स्त्री आपको मोहित करने आए तो कौन प्रैक्टिकल अनुभव जिनको वो बताएंगे। लेकिन अगर कोई स्त्री हमारे सामने आए तो हम ना बोल ही नहीं सकते, वो माला के साथ जाएंगे हम हरे कृष्ण जब करते करते। क्योंकि भगवान की शक्ति है, बहुत आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत शक्तिशाली है। तो ये लोग वीर है एक्चुअली, लेकिन हम वीर नहीं है। आपका ये है ना, मेरे साथ सहमत है ना, हम वीर है कि नहीं? हम वीर नहीं, कम से कम मैं तो वीर नहीं हूं। क्योंकि दिन रात हर क्षण लड़ाई करना पड़ता है हमको, हर क्षण हमारा चॉइस है, माया को चॉइस करना है का कृष्ण को चॉइस करना है, लेकिन मैक्सिमम बार हम माया को चॉइस करते। सिंपल उदाहरण है, ये इंटरनेट है ना हमारा, क्या बोलते हैं उसको, बैठते हम रूम में आईटी, हाँ आईटी लैब, हाँ। तो उधर जाना है नहीं जाना है ना, बहुत बार लगता है नहीं जाना चाहिए, बहुत टाइम पास हो जाता है इधर, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी जाते हैं हम। तो सिंपल छोटे छोटे बात में हम परास्त हो जाते हैं, हमारा पराभव हो जाते हैं हमारा। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से हम लोग वीर नहीं है, हमारी कहानी अलग ही है, हम बीच में, हम ना भौतिक वीर है ना आध्यात्मिक वीर है, हम बीच में है। तो हमारा अलग ही स्ट्रगल चल रहा है। तो ऐसे ही बहुत बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम, और फ्रस्ट्रेशन में फिर क्या करेंगे, हम भगवान का आश्रय लिया तो आगे करेंगे भक्ति, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ लोग भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, विश्वास उड़ जाता है। तो ऐसे ही एक दिन एक आदमी ने लेटर लिखा, ये बाहर के देश का कहानी है, एक लेटर लिखा न्यूज़पेपर को। वो लेटर में उसने कंप्लेंट किया था, कंप्लेंट उसने कहा, वो जो न्यूज़ लेटर का न्यूज़ पत्र रहता है ना न्यूज़पेपर, उसका एडिटर है, उसको पत्र लिखा उसने और कंप्लेंट लिख दिया। उसने कहा कि 30 साल से मैं चर्च में जा रहा हूँ, 30 साल से चर्च जा रहा हूँ, उसमें कम से कम 3000 प्रवचन सुने हैं मैंने, 3000 प्रवचन सुने, मैंने कैलकुलेशन किया तो आता है महीने में 2 बार आ जाता है, हफ्ते में 2 बार आ जाता है, 3000 प्रवचन सुने, लेकिन कुछ याद नहीं है, मैं कुछ भी याद नहीं रहता है, बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो वो बोला मेरे हिसाब से ये जो लोग चर्च जा रहे हैं और वो फादर उधर प्रवचन कर रहे हैं, वो सब बेकार है एकदम, यानी टाइम पास, पूरा समय का बर्बादी है, वो नहीं जाना चाहिए चर्च में। तो ऐसे करके उसने लेटर लिख दिया। तो जब एडिटर ने पढ़ा, बोला यार गर्मा गर्म मामला एकदम। तो उसने छाप दिया, छापने के बाद वो शहर में तहलका मच गया, क्योंकि जिनको उसके ऊपर विश्वास है, धर्म के ऊपर जिनको रियलाइजेशन आता है, उनको पता है कि ये बकवास नहीं है। अब ये क्या करता होगा पता नहीं हमको, लेकिन जब ये पढ़ा लोगों ने, अरे ये बोल रहा है, सब फादर वगैरह सब टेंशन में आ गए, ये बोल रहे हैं हम टाइम पास कर रहे हैं इधर प्रवचन देके, लोग आके टाइम पास कर रहे हैं, अपनी समय की बर्बादी है, तो सब लोग एकदम विचलित हो गए, और इसको डिफीट करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, नहीं तो लोग इसके ऊपर विश्वास रखेंगे। तो हजारों पत्र वो न्यूज वो एडिटर को आने लगे, रोज इतने पत्र आने लगे वो पत्र के खिलाफ जवाब देने के लिए। तो वो पढ़ता था रोज क्या लिखना है, बाद में एक पत्र उसको अच्छा लगा, एकदम बराबर डिपीट किया था उसने, वो पत्र उसने छाप दिया और ये मामला खत्म हो गया। तो पत्र में लिखा था उन्होंने, वो आदमी ने लिखा था, मेरी शादी होके 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, और 30 साल में 32,000 बार मुझे मेनू खिलाया मेरी पत्नी ने, मुझे 32,000 मील्स खाए मैंने, तो एक भी मेनू मेरी याद में नहीं है, कुछ मेनू याद नहीं आता, कल क्या किया था वो भी पता नहीं मुझे, लेकिन अभी तक मुझ में बहुत शक्ति है। तो इसका मतलब है कि मुझे याद नहीं रहता है तो खाना छोड़ दूं क्या मैं? नहीं, खाना कैसे छोड़ सकता हूं मैं, मुझे याद रहे, अगर नहीं रहे वो मेनू क्या खिलाया मेरी पत्नी ने मुझे, लेकिन मुझे शक्ति, इधर बैठा हूं मैं, है कि नहीं, वो बोल रहा है मैं नहीं वो। तो मैं अभी जिंदा हूं, मैं काम कर रहा हूं, इतना हार्ड वर्किंग कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे शक्ति मिल रही है, वो जो खा रहा हूं मैं उससे मेरा पोषण हो रहा है। तो इसी तरह से जिस तरह से शरीर को शक्ति मिलने के लिए, पोषण मिलने के लिए खाना जरूरी है। हमको समझ में आए नहीं आए, वो खाना खाने के बाद बाहर भी निकल जाता है, लेकिन पोषण होता है उसका। उसी तरह से जब हम वो चर्च में जाता होगा, हम मंदिर में आते, मंदिर में आते प्रवचन सुनते हैं, कभी कभी पढ़ते भी है, कीर्तन करते हैं, कभी कभी धुन नहीं याद रहता हमको, हरे कृष्ण ट्यून बराबर टाइम पे भूल जाते, याद नहीं रहता है हमको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बराबर ना, नहीं रहता धुन याद, कितना याद करते याद नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं याद नहीं आता है, लेकिन उससे पोषण होता है। भले हम खाना जैसे खाते हैं बाद में उसका त्याग कर देते हैं, उसी तरह से अगर इधर हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन बीच में जो ये है उसमें हमारा पोषण होता है, उसमें क्या होता है, हमारा पोषण होता है। तो जब हरि कथा की बात आती है ना, या हरि नाम की बात आती है, तो उसमें ये भौतिक कैलकुलेशन कुछ काम का नहीं है, वो हरि कथा की शक्ति इतनी है कि हमको याद रहे या नहीं रहे उसको ये पोषण करता है हमारा, इसलिए हमको पूरे विश्वास के साथ सुनना चाहिए। इस तरह से हमने कितने प्रवचन सुने होंगे अभी तक, हमको याद नहीं रहता है, हम पढ़ने के बाद दोपहर को पढ़ेंगे, तुरंत आपको कोई डिवोटी पूछेगा क्या पढ़ा आपने, ब्लैंक हो जाते हम पूरे से ब्लैंक हो जाते। लेकिन कभी कभी हमारे भक्त भी ऐसा होता है, पहले हमको भी प्रश्न था, अरे कुछ याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, कितने बार सवाल पूछते थे, लेकिन हमारा पोषण होता है उससे। कल ही मैं रात्रि भोग बना रहे थे हम, तो मैं सुन रहा था गौरंग प्रभु का लेक्चर, उनको सेम सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भागवत याद रखने के लिए नहीं, हमारे पोषण के लिए पढ़ना चाहिए, भागवत जो है हमारे नरिशमेंट के लिए पढ़ना चाहिए, भूलने से कुछ होता नहीं, उससे नरिशमेंट होता है हमारा। तो तुष्टि पुष्टि और क्षुद अपायो अनुगासम, तो जब हम प्रसाद लेते हैं, आप सबको पता है प्रसाद लेते समय हमारी जो भूख है, एक तो संतुष्टि मिलती है टेस्टी खाने से, एकदम बढ़िया बढ़िया पूरी है ना, दूध में बना हुआ स्वीट राइस खाते हैं तो हमको तुष्टि मिलती है, बाद में शक्ति मिलती है, पुष्टि मिलती है, और धीरे धीरे हमारी भूख मिट जाती है। उसी तरह से जब हम इधर सत्संग में बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो भी तीन चीज होती है कि हमारे हृदय में जो भक्ति है भगवान के प्रति वो जागृत हो जाती है। दूसरा है पोषण मिलता है हमको, किसको पोषण मिलता है, हमारी श्रद्धा को पोषण मिलता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमको विश्वास आ जाता है कि भगवान मेरा संरक्षण करेंगे, भगवान मुझे बचाएंगे और भगवान मेरी मदद करेंगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और तीसरा एक क्षुद्धापाय, मतलब हमको वैराग्य आता है, विरक्ति आ जाती है इस दुनिया से, इस दुनिया की जो चीजें हमको आकर्षित कर रही है, जो हम अटके पड़े हैं भौतिक चीज के आकर्षण के प्रति, उससे हमको विरक्ति आ जाती है। तो ये तीन चीज सत्संग में आने से होती है, तीन चीज, तो इससे हमारा पोषण होता है, इसलिए हमको परंपरा से सुनना चाहिए। जब हरि कथा की बात आती है उससे समझना चाहिए, हमको समझे अगर न समझे, ध्यान में रही अगर न रहे, उसको हम आत्मसात कर सके या नहीं कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके या नहीं कर सके, जैसे अभी हम श्लोक पढ़े है ना, पूर्वचित्ति का वर्णन वो डाइजेस्ट नहीं होता है हमको, लेकिन फिर भी हमारा शुद्धिकरण होगा, फिर भी हमारा पोषण होगा। इसलिए बहुत बार भक्त ऐसा, आप जो जो बहुत बार लोग ये करते हैं ना कि इतना भक्ति कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो करना है क्या नहीं करना है, बहुत बार लोग कर दे छोड़ दो क्या भक्ति, ऐसा बहुत बार होता है, कन्फ्यूजन में रहते लोग। प्रभुपाद प्रभुपाद बताते पर ये प्रभुपाद का एक भी पास टाइम में प्रभुपाद वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे और प्रवचन देने समय प्रभुपाद ने जय राधा माधव गाया, गाने के बाद उधर बैठे थे हंसदूत स्वामी महाराज, यशोनंदन स्वामी महाराज और महाकतु प्रभु और 15 वेस्टर्न डिसाइपल थे प्रभुपाद के, और प्रभुपाद ने जय राधा माधव गाने के बाद हिंदी में प्रवचन चालू किया। जैसे प्रभुपाद ने हिंदी में प्रवचन चालू किया तो ये सब उठने लगे, सब वेस्टर्न डिसाइपल प्रभुपाद के उठने लगे। तो प्रभुपाद ने महाकृति प्रभु को बुलाया, बोले ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग, तो प्रभुपाद को उन्होंने बोला नहीं हम तो स्वामी बोल रहे थे कि आप प्रभुपाद हिंदी में लेक्चर दे रहे हैं, हमको तो हिंदी समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो प्रभुपाद बोले नहीं फिर भी बैठो आप, क्योंकि आप अगर बाहर जाएंगे तो स्पेस आउट हो जाएंगे, आप इधर बैठो तो ये अगर आपको समझो अगर ना समझो ये आपको फायदा होगा, इधर बैठ के इधर बैठो। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनको उधर बिठाया, बोले आप इधर बैठो आपका फायदा होगा, बाहर मत जाओ। तो इसी तरह से जब जब हरि कथा हरि नाम जो भी हरि नाम संकीर्तन है, समझ में आए ना समझ में आए आपको, इसका कोई बीच में अड़चन नहीं आता है हमको उसका। जब हरि नाम की शक्ति का सवाल आता है ना, तो हरि नाम में पूरी शक्ति है, आपको समझो अगर ना समझो आपको शुद्ध कर देगा और आपको तुष्टि पुष्टि और विरक्ति जरूर मिलेगी। तो इसलिए शुद्धिकरण तो होना ही है। जैसे प्रभुपाद और एक बताते, जब वृंदावन में यात्रा लेके गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तब तो ऑप्शन दिया था प्रभुपाद उनके शिष्यों ने कि अभी कोई लोगों को विष्णु मंदिर जाना है तो जाओ दर्शन के लिए, नहीं तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इधर लेक्चर देने वाले हैं, जिनको लेक्चर सुनना है वो सुनो। तो बहुत सारे लोग चले गए लेकिन प्रभुपाद इधर बैठे थे उधर सुनने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कुछ भी समझता नहीं था, इंग्लिश कुछ नहीं समझता था, वो क्या बोलते थे क्या नहीं कुछ नहीं समझता था, लेकिन मेरा एक बात के ऊपर विश्वास था कि जब कोई शुद्ध भक्त कृष्ण कथा करता है अगर हमको समझो या ना समझो हमारा शुद्धिकरण होने वाला है, इसलिए मैं उधर बैठा रहा। तो बाद में वो बोले कि मेरे गुरु महाराज में वो याद रखा था, जब दिखा बाद में उनको पूछा तो बोले अभय बाबू उनको श्रवण में बहुत रुचि है, क्योंकि बोलते कि बिकॉज ही हर्ड नाइसली ही विल बी एबल टू प्रीच नाइसली, ये उनके बारे में बोला प्रभुपाद के बारे में और बाद में उनको दीक्षा दिया। इसलिए जब भी हरिनाम का सवाल आता है हमको समझो अगर ना समझो हमारे दिमाग के बाहर हो फिर भी हमको शुद्धिकरण करने होगा ही हमारा। इसलिए हमारा अलग अलग रहता है, ये तुष्टि पुष्टि और विरक्ति है ना, इसका कैलकुलेशन अलग अलग रहता है। बहुत बार जैसे बड़े बड़े स्पीकर हैं, जैसे गौर गोपाल प्रभु है, गौरांग प्रभु है, बहुत हंसाते हैं, हमारे रेवती नंदन प्रभु है उनके साथ में जाता था गांव में, बहुत हंसाते, वो ऐसा सीरियस लेक्चर सीरियस देंगे लेकिन इतना हंसा हंसा के देंगे, लेकिन होता क्या है बाद में आपको पूछा तो नए भक्तों का क्या होता है, उसको केवल वो जोक याद रहता है। मेरा भी ऐसा होता था शुरुआत में, समझ में आता क्यों बताया था वो कहानी, वो जोक क्यों बताया था, उसका लेसन कुछ बात नहीं पता नहीं। तो हमको पूछा क्या तुष्टि कहाँ से आती है, अगर अच्छा कुछ जोक सुना तो हाँ बहुत बढ़िया था लेक्चर, बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया, बहुत हंसे हम लोग, तो ये तुष्टि। पुष्टि क्या, अगर कुछ मेरे जीवन में समस्या है वो समस्या को उसने आंसर किया वो प्रवचन में, हाँ तो पुष्टि, हाँ बहुत अच्छा लेक्चर है। लेकिन विरक्ति नहीं आती है, विरक्ति दूर दूर तक नहीं आती है, विरक्ति समझ में नहीं, विरक्ति आती ही नहीं है, कहाँ से आएगी विरक्ति। तो बहुत बार ऐसा है तो विरक्ति आएगी कहाँ से, तो किस तरह से, देखो हरि नाम और हरि कथा ये सवाल है ना कि हाउ डज द होली नेम होली कथा ऑफर अस विरक्ति, कैसे आएगी। तो एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी से समझेंगे हम। तो एक भक्त था, वो प्रार्थना कर रहा था, इसको भी सकते हैं। एक भक्त था, वो प्रार्थना कर रहा था भगवान को, बहुत प्रार्थना कर रहा था, बहुत बहुत प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करने के बाद भगवान को दया आई, तो भगवान से बातचीत की, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी कि आप क्या करो, अभी मेरी फिलहाल आज्ञा है, आपके घर के सामने वो पहाड़ है ना, तो जाने का उधर वो पहाड़ को पुश करो पहाड़ को। और ये कहकर भगवान गए। तो उसने कहा, अरे भगवान की आज्ञा है तो जाना चाहिए। तो रोज जाता था वो पहाड़ को ऐसा पुश कर, भगवान ने बोला है तो ऐसा पुश कर करता था। और सुबह से शाम तक जाता था, सूरज उगता है तो जाता था और शाम को आता था वो ढलने के बाद, रोज। एक एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, दो महीने हो गए, तीन महीने हो गए, चार महीने, पाँच, छः महीने हो गए, वो पर्वत हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उस पर्वत को। तो ये परेशान हो गया, अरे इतना मैं सुबह से शाम आता हूँ, इसको धक्का देता हूँ, भगवान ने बोला इसको धक्का दो, पुश पुश करो, मैं पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, हिल भी नहीं रहा है। तो फिर होता क्या है, उसके अंदर का एक शैतान जागृत हो जाता है और वो शैतान कहता है, अरे पागल हो गया तू, पागल हो गया, पहाड़ कभी हिला है क्या, इतना दिन, छह महीने से तू दिन से लेके रात तक इसको हिला रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और फिर भी आके तू इधर धक्का मार रहा है, उसको पुश कर रहा है, छोड़ दो। तो इसके मन में डाउट आ जाता है, अरे सच बोल रहा है यार ये, कुछ हो तो नहीं रहा। तो फिर क्या हो जाता है, उसके हृदय में डाउट आ जाता है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ ये भगवान ने कहा है, देखो उसका हालत क्या है, इधर एक साय उसका असुर मन बोल रहा है कि धक्का मत मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर भगवान ने बोला है धक्का मारते रहो। तो अभी कंफ्यूज हो गया, तो जाता है फिर भी जाता है जबरदस्ती, और रोज धक्का मारता है, लेकिन अभी उसका हृदय नहीं है धक्का मारने में, पहला जो विश्वास था ना उसका, अभी वो हृदय नहीं है, अभी नाम के लिए। अरे बोल केवल केवल नाम के लिए, हाँ हाँ, बस पहला जैसे पूरा शक्ति के साथ भगवान ने कहा है, अभी कुछ नहीं, अभी दोनों तरफ उसका क्या बोलते पेंडुलम हो गया, अभी कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करेगा, परेशान हो गया एक दिन, अरे कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी जब समस्या आती है तो क्या करना चाहिए, समस्या आती है तो हमारे समस्या में थोड़ा सा अंतर है, हमारे घुटने और जमीन, घुटना टेक दो जमीन के ऊपर, सर टेक दो भगवान के सामने जाके प्रार्थना करो। तो इस तरह से, इसलिए प्रार्थना मतलब क्या है, बहुत अच्छा लिखा है ये, थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा इंग्लिश, आप समझ लो। प्रेयर इज सपोज टू बी प्रेयर इज सपोज टू बी नॉट सिंपली अ स्पेयर व्हील विच विल पुल आउट व्हेन कार इज पंक्चर। प्रेयर इज सपोज टू बी द स्टेयरिंग व्हील इट यूज कॉन्स्टेंटली व्हेन वन कैन ड्राइविंग द कार। तो प्रेयर मतलब स्टेयरिंग व्हील है, वो हमेशा चलना चाहिए, वो स्पेयर व्हील नहीं है। स्पेयर व्हील क्या है, जब पंक्चर हो जाता है साल में एक बार तब निकालते, जैसे हमारा गाड़ी पंक्चर हो गया भक्ति का, तो भगवान के पास जाएंगे, भगवान बचाओ। नहीं नहीं, प्रेयर मतलब स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग व्हील छोड़ नहीं सकते गाड़ी चलाते समय, वैसे ही भक्ति करते समय प्रेयर करना छोड़ना नहीं चाहिए, वो स्टेयरिंग व्हील है। उसी तरह से ये समझ में आया, वो गया भगवान के पास, भगवान के पास गया, भगवान को बोला, भगवान आपने खुद बताया कि पुश करते रहो पहाड़ को, पुश करते रहो, मैं पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान बोले, कैसे फर्क नहीं पड़ रहा है, कौन बोला तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है, घर के अंदर जाओ, बाथरूम में जाओ। तो डर गए, बाथरूम में किस लिए जाना है, बाथरूम में जाओ, आईने के सामने जाके खुद को देखो। ठीक है भगवान, अंदर जाता है बाथरूम में, आईने के सामने खड़ा रहता है। भगवान बोलते थे, पहले कैसा था तू, एकदम ऐसा था हवा के झोंके से उड़ जाता था, लेकिन अभी कैसा हो गया, हमारे रेवती नंदन प्रभु जैसा, हा पूरा शक्तिशाली हो गए कि नहीं, हा ऐसा शक्तिशाली हो गए पूरा। तो वो बोलते हैं बराबर हो गया, और भगवान बोलते हैं, मैंने तुमको पुश करने के लिए कहा है, आपका काम है पहाड़ को पुश करना और उसको मुंह करना काम मेरा है, समझ गए। तो आपको क्या लगा आप मुंह करने वाले, उसको नहीं मुंह करने वाले, आपका जवाब है पुश। बस उसको पुश करो, मेरा जवाब है उसको मुंह करने का। तो इस तरह से हमारे भक्ति में भी हमारी हालत ऐसी है। गुरु महाराज जब हमको भीड़ बैग देते हैं ना, भीड़ देते हैं भीड़ चैंटिंग करने के लिए, तो बोलते ये हरिनाम ले लो, और हरिनाम लेके आप क्या करो, रोज हरिनाम लेते रहो। जैसे उस आदमी को भगवान ने बताया था कि आप पर्वत को ढकेलते रहो, पुश करते रहो, तो भगवान बोलते हैं हरिनाम ले, गुरु महाराज बोलते हैं कि हरिनाम ले लो आज से, और जब भी माया का माया आ जाए आपको तो आप उसको पुश करते रहो हरिनाम लेके। अभी माया तो हम 24 आवर माया में है, एक नहीं तो गुरु महाराज बोलते हैं कि हरिनाम करते रहो और हर क्षण माया को पुश करते रहो, पुश करते रहो, पुश करते रहो, हर क्षण आपको माया का वो अटैक होगा, पुश करते रहो। तो वो हाथ से पुश कर रहा था, हमको जप करके पुश करना है। तो कितने दिन जब हम हरिनाम लेने के लिए बैठते हैं तो हमको पता है हमारा हालत क्या हो जाता है, खड़ा खड़े खड़े भी सो जाते हैं कभी कभी, ऐसा गिरने का चांस रहता है बहुत बार। मैं खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, खड़े खड़े भी सोना आता है, इतना संघर्ष चलता है। और कितने साल, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच, दस, पंद्रह साल के भी बाद ऐसे ही चल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो परेशान हो जाता है ना आदमी, अरे क्या फायदा हो रहा है कि नहीं, हाँ इतना जप कर रहा हूं, इतना साधना कर रहा हूं, पूरा खत्म हो गया भागवतम चैतन्य चरितामृत खत्म हो गया, लेकिन फिर भी संघर्ष चालू है, हरि हरि नाम ले कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी माया हमको भ्रमित कर रही है, माया हमको उड़ा के ले जा रही है, फर्क पड़ रहा है कि नहीं, तो परेशान हो जाता है। फिर हमारे हृदय का एक शैतान जागा हो जाता है, एक आसुर, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। और कुछ बहुत बार क्या है, कमजोर लोग छोड़ देते, बेचारे चले जाते। ये मुझे ना एक लड़का लेके आया था, एक्चुअली मैं मंदिर में जब आया था तो एक लड़का मुझे लेके गया था, गोपाल प्रभु करके वो मुझे ब्रजवेला प्रभु के लेके पास लेके गए थे और बिठाया था काउंसलर मीटिंग में। तो वो एक माला करता था, अभी तक वो एक ही माला कर रहा है, अभी कितना साल हो गए, 15-16 साल हो गए, एक ही माला कर रहा है अभी तक। तो ऐसे लोग उसको कितना, एक बार तो इतना डांट दिया मैंने, भले मैं सो रहा हूं लेकिन कर रहा हूं, वो माला ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कमजोर लोग पूरी तरह से डिफीट हो जाते, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझ में आता है, भगवान को जाके प्रार्थना करना चाहिए। तो वो फिर बुद्धिमान व्यक्ति भक्तों के पास जाता है, नहीं तो अपने गुरु महाराज के पास जाता है, काउंसलर के पास जाता है और पूछता है उनको कि प्रभु जी इतने साल से मैं जप कर रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है प्रभु जी, अभी तक मेरे हृदय में काम वासना का ज्वालामुखी है, पूरा उड़ा के लेके जाता है मुझे एक सेकंड में, कुछ पता अस्तित्व ही नहीं मेरा उसके सामने, कुछ अस्तित्व नहीं है, पूरा उड़ा के ले जाता है, क्रोध काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है, क्या करना है, इतना जप कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर भक्त उसको बताते, देखो बाबा आप पहले कैसे थे, आप कैसे हैं उसको, क्योंकि वो एकदम न्यूट्रल होकर देखते, तो उसको एकदम सब कैलकुलेशन करके दिखाते। तो इस तरह से गुरुदास प्रभु का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। गुरुदास प्रभु बम्बई में वो पार्ले जी वाला है ना, विले पार्ले में, वो विले पार्ले उसकी वजह से नाम है वो, तो उधर गए थे उसके पास, उसका अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उधर गए तो वो एकदम बिजी था, उसने बोला आपको केवल इतना इतना टाइम है, आप तुरंत बताओ। तो गुरुदास प्रभु ने बताया कि ये ऐसा 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 लाइफ मेंबर किसी के बारे में, लेकिन वो मालिक तो था बहुत द्वेषी था इसको, एक्चुअली द्वेष करता था, इतना निंदा करने लगा, इतना निंदा करने लगा इस्कॉन के बारे में, तो गुरुदास प्रभु को रहा नहीं गया, तो बाद में बोला चुप बैठो शट अप एकदम गुस्सा हो गए, बोले शट अप। तो ऐसा जैसे बोले गुरुदास प्रभु उनको स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, तो वो बोला देखो आप साधु है ना, तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको, इतने साल से वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को आप फॉलो कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सैफरॉन लेके घूम रहे हैं, सैफरॉन जो भी है उनका कुछ था, जो लेके घूम रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, आप साधु है आपको सहन करना चाहिए, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है आपका प्रैक्टिस करके। तो गुरुदास प्रभु बोले देखो अगर मैं भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का फॉलोअर नहीं होता, अगर किसी ने मुझे ये बात बताती तो उसका गला काट देता था, अभी मैं गला काट देता था। मैं प्रभुपाद को फॉलो कर रहा हूं इसलिए केवल आपको समझा रहा हूं, बस ये डिफरेंस है। तो कौन बोलता है फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरह से इसलिए वो भगवान क्या बोल रहे थे वो आदमी को, भगवान बोल रहे थे अरे आप पुश करते रहो, आप हिल नहीं पाएंगे, मुंह करना मेरा काम है पर्वत को। इसी तरह गुरु महाराज ने क्या बोला है कि आप हरि नाम ले लो, पुशिंग माया आवे, पुश माया आवे, धोली नाम मुंह माया अवे इज नॉट आवर जॉब, इट्स लॉर्ड्स जॉब। भगवान का काम है वो माया को दूर लौटना, हमारा काम नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको सबको पता है लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे उसका। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, फेमस कहानी है, तब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तब जब अर्जुन बाण मारता था तो वो कर्ण का रथ जो है ऐसा बहुत दूर तक जाके पीछे जाता था, और अर्जुन का जो कर्ण जब अर्जुन को बाण मारता था, अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ बहुत दूर जाता था, लेकिन जब कर्ण बाण मारता था अर्जुन के रथ को, तो अर्जुन का रथ केवल ऐसा हिलता था, केवल ऐसा डुक डुक 1 mm बस। तो भगवान कृष्ण बोलते थे वेरी गुड वेरी गुड, तो बाद में वापस अर्जुन बाण मारता था कर्ण का रथ एकदम पीछे उड़ जाता था, तो बाद में कर्ण वापस आ गया, वापस बाण मारता था अर्जुन का, अर्जुन का रथ बस, तो भगवान बोलते थे वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसा बहुत बार होता है, अर्जुन को रहा नहीं जाता है, भगवान मेरे साइड में क्या उसके साइड में, तो अर्जुन बोलता है भगवान आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे साइड में उसके साइड में, मैं एक बाण से उसको उधर उतना दूर जाता है मेरे एक बाण से उसका रथ, आप कुछ नहीं बोल रहे, और वो कर्ण जब बाण मारता है हमारा रथ इतना भी हिलता नहीं, आप बोलते जा रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भगवान बोलते देखो आपके रथ के ऊपर मैं बैठा हूं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, और वो कर्ण के ऊपर रथ के ऊपर कौन है, कोई है ही नहीं उधर, जीव साधारण जीव बैठे, आपने बाण मार दिया और उसको यहां से गायब भी कर दिया तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये रथ के ऊपर मैं खड़ा हूं और फिर भी वो कर्ण और बाण मारता है और आपके रथ को थोड़ा भी हिलाता है तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, समझ गए क्या? तो इस तरह से ये इसका पर्पट बहुत अच्छा है, पता होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा पर्पट है। इस तरह से हमारा युद्ध चल रहा है माया के साथ इस दुनिया में, तो माया किधर है, माया के साइड में भगवान बैठे हैं, क्योंकि वो माया भगवान की शक्ति है, तो माया के रथ के ऊपर भगवान है, हमारे रथ के ऊपर कोई है नहीं, हम अकेले ही है कि नहीं? तो माया जब झापड़ लगाएंगी तो हम जाएंगे तो कुछ फर्क ना, जाने ही वाले हम स्लैब एकदम सोने वाले, लेकिन जब समझो हम जा रहे, कोई जीव ऐसे जा रहे रास्ते से, कोई पोस्टर दिखता है, कोई हीरोइन दिखती है पुराने जमाने की, हमारे टाइम की हमारी फेवरेट हीरोइन, और हम देखते हैं, बाद में याद है नहीं 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 देखना चाहिए, और सीधा जाते, तो भगवान खुश हो जाते, भगवान बोलते वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्यों क्या है? भगवान ने सौवरी मुनि विश्वामित्र मुनि इनको भी वेरी गुड नहीं बोला था, वेरी गुड बोतला हम गुड भी नहीं बोला था लेकिन जब ये कलयुग के जीव हम इस दुनिया में जल में है, पूना में पूरा पूरा भौतिकता में है, लेकिन हम छोटा से भी, क्योंकि उस साइड में भगवान को पता है वो माया मेरी शक्ति है, और ये टिन्नी क्या वो टाइनी जीव हवा के चुके से उड़ जाएगा, ये इतना शक्तिशाली प्रलोभन को ना बोलता है, तो भगवान बोलते उधर से भगवत धाम से वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से भगवान बोल रहे आप केवल पुश करते रहो, बस हरि नाम लेके पुश करते रहो, पुश करना आपका काम है, माया का जो पहाड़ जो है उसको हिलाना मेरा काम है, आपका काम पुश पुश करते करते आप आपका प्रामाणिकता प्रदर्शित करो, आपकी जो सिंसिरिटी है वो प्रदर्शित करो, यही आपका काम है। तो इस तरह से अभी लास्ट देखिए एक विरक्ति का चर्चा होता है ना, तो कौन बोलता है विरक्ति तो है, विरक्ति आती है। पहले से जीवन से अच्छा हमारा जीवन, हम पहले कैसे जीते थे और अभी कैसे जी रहे हैं, कम से कम हम अभी ना बोलने को सीखे, बराबर ना, ना बोलने को सीखे। अभी समझो आप हमारी कोई फेवरेट हीरोइन होगी, तो अगर हम नहीं होते तो उसको देखते रहते थे हम, है ना। लेकिन कम से कम हरे कृष्ण में आए तो कम से कम उसको ना बोल रहे हम, है ना, ये विरक्ति है, ना बोल रहे उसको। जैसे हम ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकते आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, है ना। जैसे आप मिलिट्री में भर्ती हो गए और तुरंत आपको चक्रवर्ती घोषित किया जाएगा, ऐसे कैसे होगा। वो भर्ती और चक्रवर्ती के बीच में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़े, इतना कष्ट करना पड़ता है, इतनी शिक्षा भुगतनी पड़ती है, इतना सहन करना पड़ता है, उसके बाद मेडल आ जाए चक्रवर्ती का। तो हरे कृष्ण सेना में भर्ती होने के बाद चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, ये तो गोस्वामी भी बनना है तो चक्रवर्ती बनने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारे हृदय में इच्छा आने वाली है, उसको रोक नहीं सकते हम, इच्छा आने ही वाली है। हमारा क्या प्रॉब्लम है, वो यमुनाचार्य बोलते हैं अपने वो श्लोक में कि मेरे हृदय में स्त्री के साथ संग करने का इच्छा आता है, उनके हृदय में आता है। तो हम किस झाड़ की मूली है, केत की झाड़ की मूली, तो झाड़ को मूली रहता है, तो है ना, किधर गया, हमारा कुछ गिनती नहीं है। तो इच्छा आने वाली है, केवल इच्छा को क्या कहते, इच्छा के साथ हम क्या करते, उसको नो बोलते, यस बोलते, ये है। तो देखिए कृष्ण अ डेडिकेटेड लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस इन कृष्ण भावनामृत, इसका मतलब क्या है। कृष्ण भावनामृत में एक समर्पित जीवन मतलब क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते करते केवल हमेशा माया को पुश करते रहो, बस। डेडिकेटेड मींस क्या, डेडिकेटेड मींस पुशिंग कॉन्स्टेंटली, बस पुश करते रहो माया को, कॉन्स्टेंटली पुश करते रहो बस। और सेक्रीफाइस क्या है, सेक्रीफाइस है कि हर क्षण हमको प्रलोभन आएगा, हर क्षण हम टेम्प्टेड हो जाएंगे, तो आपको हर बार नो बोलना है, हर बार क्या बोलना है, नो बोलना है। तो इस तरह से विरक्ति मतलब हमारे इच्छाओं का मेटिगेशन नहीं है, मेटिगेशन उपशमन, इच्छा का उपशमन नहीं है। विरक्ति मतलब क्या है, पावर टू से नो टू द एलोरमेंट एलोरिंग टेम्प्टेशन एंड प्रपोजल्स ऑफ द मटेरियल एनर्जी। इस भौतिक जगत की जो भी प्रलोभन है उसको ना बोलने की जो शक्ति है उसको विरक्ति कहते हैं, उसको ही विरक्ति कहते हैं। अभी लास्ट में अगर हम उसको ना बोलना सीख गए तो हमको तुष्टि भी आ जाएगी, पुष्टि भी आ जाएगी और विरक्ति भी आ जाएगी। अभी केवल दो मिनट में आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, बाद में फिनिश करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। लंदन में प्रभुपाद के एक डिसिपल है कृपामयी प्रभु, वो उनका अनुभव बताते हैं। उनके मंदिर में एक माताजी को लेके आए उनकी फैमिली, तो माताजी को पैरलिस हो गया था, अलग अलग तरह से हो गया था, उनका पूरा वो व्हील चेयर पर लेके आए थे तो पूरा गोला बन गया था उनका शरीर, ऐसा पूरा गोल दिख रही थी माता, कुछ बोलना नहीं सुनना नहीं, पूरा ऐसा एक निर्जीव की तरह उनको लेके आए थे। तो आने के बाद वो लोग क्रिश्चियन थे लेकिन उनका फेथ था इसलिए कृष्ण के मंदिर में आए, लेके आए उधर आके बाद में उन्होंने प्रार्थना किया, गए तो 6 महीने तक वो माताजी आई नहीं, वो फैमिली आई नहीं, तो कृपा प्रभु को लगा कि मर गई शायद, ऐसा लगा। लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने देखा कि वो माताजी आई है और वो वकर रहे थे ना, वकर ही बोलते हैं उसको, वकर या क्या बोलते हैं उसको, क्रचेस लेके आई है। तो चल रहे थे, किधर जा रहे थे, वो देखने के बाद वो सोचने लगे अरे माता जी तो पूरा ऐसा बेंट, पूरा इतना बेकार हालत था, अभी तो चल रही है माता जी, तो उनको रहा नहीं गया। एक्चुअली वो माता जी ना बाथरूम रहता है पुरुष स्त्री और हैंडीकैप्ट, तो हैंडीकैप्ट के बाथरूम में जा रही थी, तो वो प्रभु जी को इतना उत्साह आया उनको इतना अच्छा देख के, वो बोले माता जी उधर मत जाओ, आप क्या करो नॉर्मल बाथरूम में जाओ, क्योंकि आप हैंडीकैप्ट है नहीं। जैसे उन्होंने देखा था पूरा उनका शरीर पूरा ऐसा राउंड हो गया था, अभी इतना अच्छा चल रहे थे, उनको प्रेरणा देने के लिए बोले वो, अभी उधर जाने का जरूरत नहीं आपको, आप नॉर्मल बाथरूम में जाओ। तो उनको इतना अच्छा लगा वो माता जी को, उनको बहुत प्रेरणा मिली। तो बाद में जब वो टेम्पल हॉल में आई तो कृपा में प्रभु बोल रहे थे कि ये चमत्कार कैसा है, 6 महीने पहले आप कैसी थी और अभी इतना इतना फर्क कैसे पड़ गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप कैरेबियन में जाओ, उधर हर्बल ट्रीटमेंट रहता है। तो उधर मैं गई, तो जाने के बाद हमारे घर वाले में कुछ प्रॉब्लम नहीं था पैसे का, वो उन्होंने खर्चा किया। तो अभी देखो 6 महीने के बाद वो दवा का एहसास है। तो इस तरह से कृपा में प्रभु बोल रहे थे, हम लोग भी ऐसा गोला थे पहले, इसको में आने से पहले माया ने पूरा मार मार के हमारा पूरा बॉल बना दिया था। जो भी आता है उसको एक्सेप्ट कर देते, पूरा ऐसा हालत था हमारा, वो माता जी की तरह पूरा बेकार, माया से परेशान, लेकिन माया क्या है वो पता नहीं था। लेकिन हम बीमार थे, लेकिन जब हम हरे कृष्ण में आए, जैसे वो माता जी मंदिर में आई थी, हम हरे कृष्ण इस्कॉन में आए। तो इस्कॉन में आने के बाद भले हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा हालत क्या है, हम क्रचेस पे चल रहे है ना, वॉकर लेके चल रहे, ऐसा हालत है हमारा, वॉकर लेके चल रहे, हालांकि हम ठीक नहीं हुए है ना, ठीक नहीं है, हम पूरे गोस्वामी नहीं बने अभी तक, हम क्या कर रहे हैं, वॉकर लेके चल रहे हैं। तो माया से परेशान होने वाले हैं, माया से पराभूत होने ही वाले हैं हम। तो कृपामय प्रभु बोल रहे थे, वो माता जी जो जिसको मैंने ऐसा पूरा गोला जैसा देखा था, तो वो इतना अच्छा, उसका प्रोग्रेस देख के इतनी अच्छी हुई, उसको देख के मुझे वो औषध के ऊपर विश्वास आ गया कि हालांकि ये माता जी इतनी अच्छी तरह से तोतला बोल रही है, चल रही है, तो ये कंटिन्यूस विश्वास के साथ ये अगर दवा रहती रहेंगी तो ये एक दिन वो क्रचेस छोड़ देंगी और नॉर्मल चलने लगी और अच्छी तरह से बोलने लगी। उसी तरह से हालांकि हम बार बार डिफीट हो रहे हैं माया से, बार बार माया हमको सुला रही है, बार बार हम परेशान हो रहे हैं, उसी तरह से अगर हम विश्वास के साथ भगवान का नाम लेंगे, जप करते रहेंगे, पुश 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 करते रहेंगे माया को, तो एक दिन ये जरूर ये क्रचेस जाएंगे और हम भगवान हमको बहुत गोलोक धाम लेके जाएंगे। इस तरह से वो क्रचेस के ऊपर हम हैं, तो हमारा हालत, इसलिए हमको ये श्लोक पढ़ने के बाद जरा गड़बड़ लगता है ना, जब हम क्रचेस छोड़ देंगे चलना। तो पंकज आंगरी प्रभु बोलते हैं कि क्रचेस मतलब तपस्या और हायर टेस्ट मतलब क्या है, तपस्या मतलब से माया टू नो ग्रजिंगली, कुर 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 करते हुए माया को नो बोलना, और हायर टेस्ट मतलब क्या है, पूरे आनंद के साथ माया को ना बोलना। और आगे बोलते वो क्रचेस लेके चलना मतलब रोते रोते वो तपस्या है, और जब हम छोड़ देते हैं सब क्रचेस तो हमारी पूर्ण आनंद की स्थिति है। इस तरह से अभी तक हम क्रचेस पे चल रहे हैं, इसलिए हमारा हालत है, लेकिन एक दिन विश्वास के साथ हम अगर भगवान का हरि नाम लेते रहेंगे, जो भी हमारे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जरूर हम वीर बन जाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे।